5 नई कहानी की पहली कृति परिंदे। फकत 7 कहानियों का संग्रह परिंदे निर्मल वर्मा की पहली कृति नहीं है, बल्कि जिसे हम नई कहानी कहना चाहते हैं उसकी भी पहली कृति है। पढ़ने पर सस्ता विश्वास नहीं होता कि ये कहानियां उसी भाषा की हैं, जिसमें अभी तक शहर, गांव, कस्बा और तिकोने प्रेम को लेकर ही कहानीकार जूझ रहे हैं। परिंदे से यह शिकायत दूर हो जाती है कि हिंदी कथा साहित्य अभी पुराने सामाजिक संघर्ष के स्थूल धरातल पर ही मार्क टाइम कर रहा है। समकालीनों में निर्मल पहले कहानीकार हैं जिन्होंने इस दायरे को तोड़ा है, बल्कि छोड़ा है, और आज के मनुष्य की गहन आंतरिक समस्या को उठाया है। व्यक्ति चरित्र वही है, जीवन स्थितियां भी रोज की जानी पहचानी ही है, लेकिन निर्मल के हाथों वही स्थितियां इतिहास की विराट नियत बनकर खड़ी हो जाती हैं, और उनके सम्मुख खड़ा व्यक्ति सहसा अपने को असाधारण रूप से अकेला पाता है, और उसकी जबान से निकला हुआ मामूली सा वाक्य एक युग व्यापी प्रश्न बन जाता है। पहाड़ के पीछे से आते हुए पक्षियों के झुंड को देखकर परिंदे की लतिका चलते चलते सोचती है, क्या वे सब प्रतीक्षा कर रहे हैं? लेकिन कहाँ के लिए, हम कहाँ जाएंगे? प्रश्न मामूली है, लेकिन कहानी के माहौल में वह सिर्फ पक्षियों का या लतिका का व्यक्तिगत प्रश्न नहीं रह जाता। जैसे इस प्रश्न से लतिका, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट सबका संबंध है, इन सबका और इनके अलावा भी और सबका। देखते देखते प्रेम की एक कहानी मानव नियत की व्यापक कहानी बन जाती है, और एक छोटा सा वाक्य पूरी कहानी को दूरगामी अर्थवृत्तों से वलयित कर देता है। हम कहाँ जाएंगे, यह वाक्य सारी कहानी पर अर्थ गंभीर विषाद की तरह छाया रहता है। प्रसंगात चेखव की कहानियों में बार बार गूंजने वाला यह प्रश्न याद आ जाता है, हम क्या करें? वह प्रश्न जिसकी गूंज 19वीं सदी के सारे रूसी कथा साहित्य और सामाजिक चिंतन में बार बार सुनाई पड़ती है, जैसे सारा जमाना एक साथ पूछ रहा हो कि क्या करें। इसी प्रकार सितंबर की एक शाम का बेकार नवयुवक घास पर लेटे हुए जब सोचता है कि सारी दुनिया उसकी प्रतीक्षा कर रही है और वह कर रही है कि वह उसे अर्थ दे, तो उस साधारण बेकारी से कहीं बड़ा अर्थ ध्वनित होता है। उसने आंखें उठाई, सारी दुनिया उसके सामने पड़ी थी और उसकी उम्र 27 वर्ष की थी। यह एक वाक्य बहुत कुछ कह देता है। एक वाक्य में आज का सारा अंतर विरोध छलक उठता है, संभावना और व्यर्थता का अंतर विरोध। बेकारी पर लिखी हुई दर्जनों कहानियां एक ओर और सितंबर की एक शाम एक ओर, माया का मर्म कि बेरोजगारी भी इसी प्रकार जिंदगी की व्यापक निरर्थकता को व्यंजित करती है, जिसे आल्बेयर कामू एब्सर्ट करता है। स्वतंत्रता या मुक्ति का प्रश्न जो समकालीन विश्व साहित्य का मुख्य प्रश्न बन चला है, निर्मल की कहानियों में प्रायः अलग अलग कोण से उठाया गया है। एक तरफ देखा जाए तो परिंदे की लतिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है, अतीत से मुक्ति, इसनिस से मुक्ति, उस चीज से मुक्ति जो हमें चलाए चलती है और अपने रेले में हमें घसीट ले जाती है। इन कहानियों के प्रायः सभी व्यक्ति चरित्र अपने अतीत की स्मृति से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील हैं। सारी कहानियां इस मुक्ति की पीड़ा के मार्मिक अभिव्यंजना हैं। सर्वत्र कोशिश यही है कि इतिहास से अपने को मुक्त करके एक साक्षी या विटनेस के रूप में उसे देखा जाए। मुक्ति का यह क्षण जिसमें मनुष्य स्वयं अपना साक्षी हो, निर्मल की अनेक कहानियों का आलोक केंद्र है, और उस क्षण के आलोक में ही व्यक्ति देखता है कि वह मुक्त है और सारी दुनिया उसकी प्रतीक्षा कर रही है। इस प्रकार ये कहानियां जीवन की विभिन्न स्थितियों के संदर्भ में आज के सबसे बड़े मानव मूल्य, मानव मुक्ति को परिभाषित करती हैं। यह आकस्मिक नहीं है कि कहानी के माध्यम से मानव मुक्ति का प्रश्न उठाने के साथ ही निर्मल ने अपनी कहानियों को भी हिंदी कहानी की परिपाटी से मुक्त करने का प्रयत्न किया है। सच्ची रचना वहीं शुरू होती है जब लेखक अपनी स्मृति को जीवन संबंधी प्रचलित साहित्यिक यथार्थ से मुक्त कर लेता है। जैसा कि एक निबंध में निर्मल ने स्वयं कहा है, ऐसे ही शून्य से कला का जन्म होता है। विरासत में मिले फार्मूलों से मुक्त होकर जब कोई लेखक सीधे जीवन का साक्षात्कार करता है और जिंदगी की जटिलताओं से प्रवेश करके सच्चाई का पता लगाता है, तभी नवीन कलाकृत का सृजन संभव है। तीसरा गवाह कहानी जैसे इसी सृजन सिद्धांत को उद्धृत करने के लिए कही गई है। प्रेम और विवाह के संबंध में एक वकील साहब अपनी घिसी पिटी धारणाएं प्रकट करते हैं तो रोहतगी साहब बहुत ही धीमे स्वर में कहते हैं कि हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। वकील साहब, सच्ची बात उस लड़की के अलावा कोई नहीं जान सकेगा और मुझे संदेह है कि क्या वह खुद भी सही कारण जान पाएगी। इस कथन के पीछे जीवन की जटिलता की ओर कितना संजीदा संकेत है, इसका ठीक ठीक एहसास उस समय होता है जब हम बड़े बड़े लोगों को हर मसले पर दनादन राय देते हुए देखते हैं। तीसरा गवाह कहानी इस बात को जैसे साबित करने के लिए लिखी गई है कि स्वयं अपने ही जीवन में घटी हुई घटना भी कितनी जटिल होती है कि कभी कभी स्वयं हमारे लिए ही उसे ठीक ठीक समझना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार यह कहानी वास्तविकता के प्रति एक नए दृष्टिकोण की ओर संकेत करती है, जिसे चाहे तो नई कहानी की शुरुआत भी कह सकते हैं। हर घटना अनेक व्याख्याओं के लिए खुली हुई है और समस्त व्याख्याओं के बावजूद वह घटना समाप्त नहीं हो जाती। यह भावबोध हिंदी कहानी में एक नए मोड़ की सूचना देता है। अभी तक जो कहानी सिर्फ कथा कहती थी या कोई चरित्र पेश करती थी अथवा एक विचार का झटका देती थी, वहीं निर्मल के हाथों जीवन के प्रति एक नया भावबोध जगाती है, साथ ही ऐसे दुर्लभ अनुभूत चित्र प्रदान करती है जिन्हें हम कम से कम हिंदी में कहानी के माध्यम से प्राप्त करने के अभ्यस्त नहीं थे। जाहिर है कि एक नए गद्य के बिना कहानी के क्षेत्र में इस प्रकार के नवीन प्रयत्न असंभव थे। इन कहानियों को पढ़ते समय एक नए गद्य से परिचय होता है, अपने प्रयोजन के लिए बनाया हुआ लेखक का अपना गद्य। संभवतः कहानी का गद्य इतना संवेदनशील तो पहले कभी न था, या तो भावोच्छ्वसित गद्य काव्य था या नितांत कामकाजी। परिंदे को देखकर लगता है कि भाषा के क्षेत्र में जो काम इतने दिन में प्रयोगशील नई कविता भी न कर सकी, उसे अंततः कहानी के गद्य ने कर दिखाया। छोटे छोटे संवादों में उभरी हुई पिक्चर पोस्टकार्ड कहानी संभवतः इस गद्य के निखरे हुए आधुनिकतम रूप को प्रकट करती है। कुल मिलाकर इस संग्रह की कहानियां कहानी के एक परंपरा सिद्ध ढांचे में अनेक नई संभावनाओं का संकेत करती हैं। अभी तो यह एक शुरुआत है, लेकिन एक संभावनापूर्ण शुरुआत। दो, कहानी संग्रह परिंदे का प्रकाशन अब हुआ है, लेकिन निर्मल वर्मा की कहानियों की चर्चा एक अरसे से हो रही है। प्रायः सभी मानते हैं कि उनकी कहानियां गहरा प्रभाव डालती हैं, लेकिन ऐसा प्रभाव उत्पन्न करने वाली कला का विश्लेषण अभी तक नहीं हुआ है। भावुकता, निराशा, एकरसता वगैरह की शिकायत अलबत्ता की गई है। बेहतर है शुरुआत इस प्रभाव के विश्लेषण से ही हो। यह सही है कि निर्मल की कहानियां गहरा प्रभाव छोड़ जाती हैं, यहाँ तक कि तमाम कहानियां लगभग एक सा प्रभाव छोड़ती हैं, और यह भी सही है कि इस प्रभाव के आगे न चरित्र याद रहते हैं और न घटनाएं। लेकिन यह सवाल यह है कि क्या इनका याद रखना जरूरी है? पाठक के लिए जरूरी क्या है, प्रभाव या चरित्र याद? जिन कहानियों के चरित्र आदि याद रह जाते हैं, क्या वे भी ऐसा ही प्रभाव डालती हैं? क्या यह सही नहीं है कि जिन कहानियों में विविधता के नाम पर ढूंढ ढूंढ करके अजीबो गरीब चरित्र लाए जा रहे हैं और अछूते जीवन खंड पेश किए जा रहे हैं, वे प्रभाव के नाम पर या तो शून्य हैं या फिर केवल विस्मय जगाकर ही रह जाती हैं? जाहिर है कि ये कहानीकार कहानी के प्रभाव की जगह सिर्फ अपना प्रभाव पैदा करना चाहते हैं। चरित्र वहीं याद आते हैं जहां भाव कमजोर होता है और शिल्प प्रबल। दूसरे शब्दों में कहानी जहां कहानी के ढांचे में दरार रहती है और साफ है कि ऐसी दरारों वाली कहानी अभीष्ट प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकती। अचंभा तो इस बात का है कि जीवन विविधता की इस दौड़ धूप में कहानीकारों के हाथ से यह परंपरागत बुनियादी सिद्धांत भी छूटता जा रहा है कि कहानी का लक्ष्य प्रभावान्वित है, चरित्र कथानक आज तो उसके साधन है। निर्मल की कहानियों में प्रभाव की गहराई इसीलिए है कि उनके यहाँ चरित्र वातावरण कथानक आज का कलात्मक रचाव है। कलात्मक रचाव स्वयं रूप के विविध तत्वों के अंतर्गत, फिर वस्तु और रूप के बीच तथा स्वयं वस्तु के अंतर्गत पात्र अलग अलग इसलिए याद नहीं आते कि वे परिस्थितियों के अंग हैं। निर्मल के मानव चरित्र प्राकृतिक वातावरण में किसी पौधे फूल या बादल की तरह अंकित होते हैं, गोया वे प्रकृति के ही अंग हैं। परिंदे कहानी की छोटी छोटी स्कूल लड़कियां तथा मीडोज, झरने, झाड़ियां, फूलों, चिड़ियों में कोई अंतर नहीं है। नीचे वे शोर करते हुए खेल रही हैं और दूर लचका तक जो प्रभाव पहुंचता है उसमें झरने, चिड़ियों और लड़कियों के स्वर घुल मिल गए हैं। निसर्ग एक है जिसमें सारे भेद सहज ही मिट जाते हैं। एक हृदय है जो तमाम चीजों को रागात्मक संबंध में जोड़ देता है। कलाकार का एक स्पर्श है जो सारे अनमेल तत्वों को एक रूप में रच देता है। अंधेरे में कहानी के कलाकार वीरेन की तरह आंखें हैं जिन्हें देखकर लगता है कि जिस वस्तु पर टिक जाएंगी वह अपने आप समर निखर जाएगी। इतने अधिक तत्वों को लेकर एक प्रभाव की सृष्टि करना आसान नहीं है। हर तत्व आकर्षक है, हर आकर्षक में भटकाव है और एक भी भटकाव प्रभाव को क्षीण कर सकता है। शायद संगीत ही एक ऐसी कला है जो प्रभावान्वित के दृष्टि से कला की पराकाष्ठा है और इसीलिए हर कलाकार की यह सबसे बड़ी आकांक्षा रही है कि उसकी कलाकृत संगीत की हद को छू ले। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चित्रकारों ने यह चित्रकला को अधिक से अधिक ज्यामितिक रूपाकारों में बदलने की कोशिश की तो मलारमे में जैसे प्रतीकवादी कवियों ने भाषा के सीमा में रहते हुए भी कविता को संगीत बनाने का प्रयत्न किया। बहुत संभव है कि कहानी में प्रभावान्वित को सबसे अधिक महत्व देने वाले एडगर एलन पोप के ध्यान में भी कहानी को प्रभाव की दृष्टि से संगीत की हद तक पहुंचा देने की ही आकांक्षा रही हो, क्योंकि उसका भी कलात्मक आदर्श संगीत ही था। अपने प्रेमचंद ने भी कहानी की उपमा ध्रुपद की तान से दी है। बहरहाल कहानी प्रभाव सृष्टि की दृष्टि से संगीत की हद छू सकती है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि निर्मल की कहानियां संगीत का सा प्रभाव उत्पन्न करने में समर्थ हैं। आकस्मिक नहीं है कि उनकी अधिकांश कहानियों में संगीत का प्रकरण आता है। डायरी का खेल कहानी में चैपल के बरामदे में एक स्त्री खड़ी थी, संगमरमर सी सफेद स्तब्ध निश्चल जिस पर फीकी पीली सी चांदनी गिर रही थी। पीछे बहुत धीमे सिसकता सा पियानो का संगीत स्वर बहता सा आ रहा था। पिक्चर पोस्टकार्ड कहानी में परेश धीरे धीरे जूस बॉक्स के पास आया और कुछ देर तक उसके सामने खड़ा रहा, फिर उसने चवन्नी डालकर धीरे से बटन दबाया। रिकॉर्ड धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। जूस बॉक्स के भीतर सितारे सी लाल बत्ती जल उठी। परिंदे कहानी में तो स्वयं एक चरित्र ही पियानो वादक है, मिस्टर ह्यूबर्ट। उसी क्षण पियानो पर सोपा का नॉकटर्न ह्यूबर्ट की उंगलियों से फिसलता हुआ धीरे धीरे छत के अंधेरे में खुलने लगा, मानो जल पर कोमल स्वप्निल उर्मिया भंवरों का झिलमिलाता जाल बुनती हुई दूर दूर किनारों तक फैलती जा रही हो। लचका को लगा कि जैसे कहीं बहुत दूर बर्फ की चोटियों से परिंदों के झुंड नीचे अनजान देशों की ओर उड़ रहे हैं। निर्मल ने संगीत का चित्रण केवल चित्रण वातावरण चित्रण के लिए ही नहीं किया है, बल्कि संगीत के उस राग धर्म को भी व्यक्त किया है, हारमोनी, जिसके द्वारा विविध वस्तुएं पिघल कर अपनी पृथक सत्ता खोती हुई एक भाव धारा में बदल जाती हैं। परिंदे की नायिका लतिका को चैपल में संगीत सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे मोमबत्तियों के धूमिल आलोक में भी कुछ भी ठोस वास्तविक न रहा हो। चैपल की छत, दीवारें, डेस्क पर रखा हुआ डॉक्टर का सुघड़ सुडौल हाथ और पियानो के सुर अतीत की धुंध को भेदते हुए स्वयं उस धुंध का भाग बनते जा रहे हों। राग धर्म के अतिरिक्त निर्मल के यहाँ संगीत अनुभवों को अर्थ प्रदान करता है। ह्यूबर्ट को लगा पियानो का हर नोट चिरंतन खामोशी की अंधेरी खोह से निकलकर बाहर फैली नीली धुंध को काटता तराशता हुआ एक भूला सा अर्थ खींच लाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि संगीत वर्ण निर्मल के लिए कहानी में केवल शोभा नहीं है, बल्कि संपूर्ण रचना प्रक्रिया ही संगीत धर्मी है। फरवरी मार्च 1959 की कृति में सौंदर्य की छायाएं शीर्षक निबंध में उनका मौन पियानो के भीतर का मौन है। एक चरित्र एक छोटा सा नोट है, एक मौन बिंदु से दूसरे बिंदु तक उड़ता हुआ प्रतीक्षारत। वे प्रतीक्षा करते हैं अंगुली के स्पर्श की, हल्के से दबाव की, और इस दबाव के अनेक स्तर हैं। मौन की चिरंतन स्थिति से अमूर्त लय को बाहर निकालने के लिए अंगुली का दबाव निर्मल के अनुसार कहानीकार की रचना प्रक्रिया का पहला कर्तव्य है। कहना न होगा कि इस दबाव के द्वारा उन्होंने कहानी के रूप में एक पाक की रचना की है, जिसमें कहानी के सभी तत्व एक रस होकर एक अन्वित प्रभाव के सृष्टि करते हैं। संभवतः यह वही विशेषता है जिसे इविंग होवे स्टोरी टोन कहते हैं। दर्जनों कहानियां लिखने के बाद भी आज के बहुत से कहानीकार जिस टोन को प्राप्त नहीं कर सके हैं, निर्मल ने उसे उपलब्ध करके अपने व्यक्तित्व की विशिष्टता प्रतिष्ठित कर दी है। अब सवाल यह है कि यह प्रभाव क्या है, कैसा है, इसका रूप क्या है, इससे क्या भाव उत्पन्न होता है। जैसा कि कुछ लोगों का कहना है, उनके मन में भावुकता उत्पन्न होती है। भावुक व्यक्ति किसी भी प्रकार से भावुक हो सकते हैं, लेकिन इसका निर्णय कैसे हो कि भावुकता निर्मल की कहानियों में है या इन पाठकों में। प्रभाव चाहे जिसका हो, लेकिन स्वयं कहानी नहीं हो सकता। यदि यह सच है तो यह भी उतना ही सच है कि अपने प्रभाव के अलावा कहानी को ग्रहण करने में कोई दूसरा साधन भी नहीं है। निर्णय स्वयं कहानी के हाथ है, क्योंकि वह केवल प्रभावित ही नहीं करती, बल्कि विशेष रूप से प्रभावित करना चाहती है, और उस विशेष संकेत को जो पाठक पकड़ लेता है वह कहानी की आत्मा के सबसे निकट होता है, बल्कि रूपगत अंतःसूत्रों को आपस में तुरंत जोड़ भी लेता है, और इस तरह उसके सामने कहानी के अधिक से अधिक करीब की प्रतिमा होती है। निर्मल की अधिकांश कहानियां अतीत की स्मृति है। कहानी कहने वाला वर्षों बाद उन स्मृतियों को कैसे दोहराता है, डायरी का खेल कहानी के अंत में वाचक नैरेटर कहता है, आज उस बात को बीते एक साल गुजर चुके हैं। तीसरा गवाह कहानी के वाचक मिस्टर रोहतगी भी वर्षों बाद अपनी जवानी के दिनों की कहानी सुना रहे हैं। परिंदे की लतिका की दुखांत गाथा भी वर्षों पुरानी है। स्मृति में भावुकता संभव है, किंतु समय का अंतराल तात्कालिकता के आवेग को काफी कम कर देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि तात्कालिक आवेग की भावुकता को कम करने के लिए ही निर्मल समय का इतना अंतराल दे देते हैं। डायरी का खेल कहानी में वाचक कहता है, किंतु बिट्टो की स्मृति सेंटिमेंटल नहीं बनाती, वह अतीत का भाग है जो कि याद करके भुलाया जा सके। इसमें कुछ ऐसा होता है जो न होकर भी संग संग चलता है, जिसे याद नहीं किया जाता क्योंकि उसे वह कभी नहीं भूलता। अतीत समय के संग जुड़ा है, इसलिए चेतना नहीं देता, केवल कुछ क्षणों के लिए सेंटिमेंटल बनाता है। जो चेतना देता है वह कालातीत है। इसके अतिरिक्त जो कहानियां अतीत की स्मृति नहीं है, उनमें कथा कहने वाला पात्र संपूर्ण घटना से बहुत कुछ असंपृक्त है, सबका साक्षी है। अंधेरे में कहानी कहने वाला एक छोटा सा बच्चा है, जो अपनी माँ के प्रेम की दुखद कहानी का अबोध दर्शक है। माया का मर्म, सितंबर की एक शाम कहानियां ऐसी हैं जिनमें घटना एकदम तत्काल की है और वाचक भी स्वयं भोगता है, किंतु इन कहानियों के नायक वर्तमान से सहसा अपने को मुक्त करके स्मृतिहीन व्यक्ति बन जाते हैं। माया का मर्म के नायक के शब्द हैं, मैंने पहली बार बेरोजगारी के इस लंबे और उदास अरसे पर के दरिद्रता को राख को बिना दर्द के कुरेद दिया। जो अभाव की रिक्तता से अब तक चुभती थी वह अब भी है, किंतु जैसे वह अपनी न रहकर पराई बन गई है, जिसे मैं बाहर से तटस्थ भाव से देख सकता हूँ, जिसने अब छुट्टी का सहज भाव अपना लिया है। वह खुली हुई प्रकृति के बीच आता है और फिर प्रकृति से प्रसन्न एक छोटी सी बच्ची का साथ हो जाता है, जो नए वातावरण में उसे महसूस होता है। मेरी उम्र कहीं बहुत पीछे छूट गई, जैसे उसका कभी मुझसे वास्ता न रहा हो। सितंबर की एक शाम का बेरोजगार नायक भी घर से बाहर निकलते ही महसूस करता है कि उसके पांव पीछे कोई निशान नहीं छोड़ गए हैं, जैसे वह अभी जन्मा है, उसकी जिंदगी की गांठ अतीत के किसी प्रेत से नहीं जुड़ी है, इसलिए वह मुक्त है और घास पर लेता है। परिंदे की नायिका लतिका बेशक भावुक मालूम होती है, लेकिन उसकी भावुकता को कम करने के लिए साथ साथ दूसरा पात्र डॉक्टर मुखर्जी आता है, जो कहानी समाप्त होते होते सारी भावुकता को मिटाकर दूसरा ही प्रभाव उत्पन्न कर देता है। डॉक्टर स्वयं दुखी है, किंतु अपने दुख के प्रति अनासक्त सा है। जिंदगी के तजुर्बे ने उसे प्रौढ़ मना बना दिया है। लतिका के बचकानेपन को वह कभी ठहाके में उड़ा देता है, तो कभी ऐसे अनुभवपूर्ण वाक्यों द्वारा जो परोपदेश की रुक्षता उत्पन्न करने की जगह स्वगत संलाप की गंभीरता पैदा करते हैं। मरने वाले के संग खुद थोड़े ही मरा जाता है, अथवा किसी चीज को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह उससे चिपटे रहना, यह भी गलत है। और इस बीच अपने आप धीरे धीरे स्वयं लतिका में भी परिवर्तन होता है। अब वैसा दर्द नहीं होता, सिर्फ उसकी याद करती हूँ जो पहले कभी होता था। व्यथा की गहनता में निर्मल के पात्र प्रायः खामोश रहते हैं। उनकी खामोशी व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। उनका मौन पियानो के अंदर का मौन है, जिसकी एक आध की पर कभी कभी लेखक की उंगली का हल्का सा दबाव पड़ता है। पिक्चर पोस्टकार्ड का परेश खामोश रहता है। तीसरा गवाह के मिस्टर रोहतगी भी भीड़ के बीच काफी खामोश थे, यहाँ तक कि अंधेरे में का छोटा सा लड़का भी इस रोग से ग्रस्त है, क्योंकि उसकी हम उम्र सी एक बच्ची के अलावा जो कभी ही कभी आती है उससे कोई बात करने वाला नहीं है। इस अनाशक्ति और ऐसी तटस्थता के निर्मल जब किसी करुण प्रसंग का चित्रण करते हैं तो भावावेग रहित डायरी का खेल की बिट्टू चुपचाप रो रही है, किंतु उनका स्वर इतना सहज इतना शांत था कि कितनी ही देर तक मैं जान भी न सका कि बिट्टू रो रही है। अपने ही में धीमे धीमे आंसू जो बिल्कुल ठंडे वंचना रहित होते हैं, जिनको बहाने से रोना नहीं होता, दुख से छुटकारा नहीं मिलता, जो हृदय को एक मर्मांतक तक घनीभूत पीड़ा में निचोड़ते हुए चुपचाप बूंद बूंद गिरते हैं। इस प्रकार निर्मल की यह आत्मीयता है जो मानो हमें भिगो कर खुद सुखी रह जाती है। उन्होंने जो बात बिट्टू के लिए कही है वह उनके लिए भी लागू करती कही जा सकती है। आईने की तरह उनके चेहरे पर वह सब कोई देख लेते जो देखना चाहते हैं, किंतु उन्हें कोई देख नहीं देख पाता। इस संदर्भ में 1916 ईस्वी में प्रथम रमेश चौधरी को शरदचंद द्वारा लिखे गए एक पात्र का यह अंश बहुत उद्धृत करने योग्य है। कोई कोई अत्यंत गंभीर स्वभाव के लोग जैसे अपने दुख को भी कहने के समय एक ऐसे ताच्छिल्य का पुट देते हैं कि अचानक लगता है कि वह किसी और के दुख की कहानी कह रहे हैं, मानो इससे उनका कोई संबंध ही नहीं है। आप भी ठीक उसी तरह कहते हैं, घुमा फिरा कर कातरोक्ति कहीं भी नहीं है, पर जीवन की न जाने कितनी बड़ी ट्रेजेडी पाठकों के दिल पर चोट करती है। आपकी रचना की यह सहज शांत मंजी हुई लिखने की भंगिमा ही मुझे सबसे अधिक मुग्ध करती है। भावुकता का निर्णय पाठकों के अपने अपने मानसिक प्रभावों से नहीं होता, विचारणीय यह है कि स्वयं कृत में भावुकता है या नहीं, लेखक में कलागत संयम कितना है। भावमय संयम और कलात्मक संगत दोनों पर्याय हैं, और जहाँ प्रभाव की गहराई है वहाँ इनका होना निश्चित है। यह कला संयम है जिसके द्वारा जीवन की दुखांत स्थित को भी निर्मल जिजीविषा और आशा से अनुप्राणित कर देते हैं। बिट्टो तपेदिक की मरीज है, उसे मृत्यु का भय बराबर बना रहता है। उसका मृत्यु भय इस हद तक पहुंच गया है कि भय से अधिक जिजीविषा प्रकट होती है। ट्रेन में उसे नींद नहीं आती क्योंकि डर है कि सोते में कहीं ट्रेन उलट न जाए, और मरने से पहले सोते रहना कैसा अजीब है। गोया मृत्यु को आना ही है तो आंख खोल के उसका सामना किया जाए, उसकी साथ दुल्हन बनने की है, लेकिन वह जानती है कि इस बीमारी के रहते वह कभी पूरी न होगी। एक दिन वह आह्लाद के स्वर में बब्बू से कहती है, मरने से पहले बहुत जी भर कर जीना चाहिए बब्बू, जैसे हम पहली बार जी रहे हों, जैसे हमसे पहले कोई न जिया हो। जीवन की यह लालसा एक ओर मृत्यु की भयंकरता को उग्र करती है तो दूसरी ओर अज्ञेय जीवन शक्ति का भी आभास दिलाती है। इसी प्रकार घोर से घोर निराशा की स्थिति में भी निर्मल स्थिति का अतिक्रमण करने का प्रयत्न करते हैं। माया का मर्म का नायक बेरोजगार है, बेरोजगारी ने उसके अस्तित्व इतनी गहराई तक प्रभावित किया है कि उसके लिए मेरा सोचना मेरे जैसा ही बेकार है। उसी नवयुवक की जीवन दृष्टि को एक छोटी सी घटना बदल देती है। वर्षा की शाम कागज की नाव लिए एक छोटी सी बच्ची मिलती है, साथ हो जाता है, बातें चल निकलती हैं। गंदेले पानी का नाला है, बच्ची उसी में अपनी नाव डाल देती है और इस आशा से देखती है कि जैसे यह उसी लोक को जा रही हो जिसका वर्णन उसने जीजी से कहानी में सुना था। घटना बीत गई, बेकार वह इसके बाद भी रही, लेकिन एम्प्लॉयमेंट दफ्तर जाने की आदत छूट गई। उस जिंदगी में भी उसे बच्ची का सपना एक अर्थ देता रहा। पिक्चर पोस्टकार्ड के परेश निक्की सीडी तीन नवयुवक विश्वविद्यालय की शिक्षा समाप्त करके शहर दिल्ली में वक्त गुजार रहे हैं। काम है अखबारन विषी अखबार नवीसी आईएएस की तैयारी वगैरह। विद्यार्थी जीवन की आदत के अनुसार विश्वविद्यालय का चक्कर भी लगा लेते हैं और खाली जिंदगी को सांस पढ़ी छात्राओं की बातचीत से भरने की कोशिश करते हैं। निरुद्देश्यता अपने आलसी रूप में मौजूद है, थक कर रेस्तरा में बैठे हैं, बातचीत अचानक मोड़ ले लेती है। क्या तुम कभी कम्युनिस्ट रहे थे? तुमसे किसने कहा? सीडी ने कहा था, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया। क्या यह सच है? सीडी ने क्या कहा था? कुछ नहीं, मुझे सिर्फ उत्सुकता हुई थी। जानते हो, मेरा अभी तक किसी कम्युनिस्ट से वास्ता नहीं पड़ा। दूर से देखा है, लेकिन इतने पास से कभी नहीं जितने तुम हो। परेश, क्या तुम सचमुच कम्युनिस्ट रह चुके हो? निकी, अगर तुम्हारी बात बीती हुई उम्र के पिछले 5 साल तुम्हें कोई लोटा दे तो तुम क्या करोगे? मैं आर्मी में चला जाता परेश, मुझे एक बात का हमेशा दुख रहेगा, पिछली लड़ाई में मैं बहुत छोटा था वरना मैं जरूर जाता। बातचीत के इस आकस्मिक टुकड़े पर कहानी में कोई टिप्पणी नहीं है, बात बोलेगी हम नहीं। निर्मल के चरित्र कहीं कहीं जीवन की व्यर्थता में भी अर्थ खोजने की कोशिश करते दिखाई पड़ते हैं और निरुद्देश्य में भी एक उद्देश्य एक आस्था की तलाश है और इन तमाम अंतर विरोधों को अपने अंदर लिए हुए एक भविष्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं क्योंकि भविष्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। सितंबर की एक शाम सारी दुनिया उसकी प्रतीक्षा कर रही है कि वह उसे अर्थ दे, उसकी बाट जोह रही है सांस रोके। उसने आंखें उठाई, सारी दुनिया सामने पड़ी थी और उसकी उम्र 27 वर्ष की थी। निर्मल की यह प्रतीक्षा इतनी विशद है कि प्रेम की कहानी में भी प्रेम भावना का अतिक्रमण कर जाती है और अपने विस्तार में संपूर्ण मानवनीयत का प्रश्न बन जाती है। निर्मल की पैने दृष्टि भली भांति देखती है कि एक प्रश्न है जिसका सामना आज का युवक भी कर रहा है और युवती भी। इसकी काली छाया एक ओर बेरोजगारी की शक्ल में दिखाई पड़ती है तो दूसरी ओर प्रेम के निजी क्षेत्र को भी ग्रस रही है। जीवन का यही व्यापक परिवेश बोध है जिसके कारण निर्मल की प्रेम कहानियां नितांत प्रेम कहानी न होकर जीवन की अन्य समस्याओं से जुड़ जाती हैं। एक पहेली सी रहस्यमयता है जो क्षणिक होते हुए भी एक असीमता घेरे है। परिंदे की नायिका लतिका राह चलते चलते अचानक सिर के ऊपर पक्षियों का बेड़ा उड़ते देखती है और अपने आप सोचने लगती है। हर साल सर्दी की छुट्टियों से पहले ये परिंदे मैदान की ओर उड़ते हैं, कुछ दिनों के लिए बीच के इस पहाड़ी स्टेशन पर बसेरा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं बर्फ के दिनों की जब वे नीचे अजनबी अनजान देश में उड़ जाएंगे। क्या वे सब भी प्रतीक्षा कर रहे हैं? वह डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, लेकिन कहाँ के लिए? हम कहाँ जाएंगे? यह सिर्फ एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, इनका उनका सबका प्रश्न है और मानव नियत का यह विराट प्रश्न सारी कहानी पर छा जाता है। प्रश्न की यह गूंज कुछ वैसी ही है जैसी चेखव की प्रायः तमाम कहानियों में कहीं न कहीं गूंजती रहती है। हम क्या करें? गोया सारा जमाना एक साथ पूछ रहा है, क्या करें, कहाँ जाएं? निर्मल इस प्रश्न के ठीक बाद धीरे धीमे स्वर में केवल इतना कहते हैं, किंतु उसका कोई उत्तर नहीं मिला। निर्मल की यह खामोशी खास अपनी है। जिंदगी अक्सर सामने ऐसे सवाल रखती है कि समझदार कुछ देर के लिए खामोश हो जाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग ऐसे भी होते हैं जो खामोश नहीं रह सकते, उन्हें जवाब की जल्दी रहती है, सवाल चाहे जो हो। कहानी इसके बाद भी चलती है, जिंदगी इसके बाद भी है, एक जवाब मिल जाता है और नया सवाल खड़ा हो जाता है, प्रतीक्षा फिर भी है लेकिन नए उत्तर की। हम विश्लेषण इस विश्लेषण से स्पष्ट हो सकता है कि निर्मल की कहानियों के प्रभाव के पीछे जीवन की गहरी समझ और कला का कठोर अनुशासन है। बारीकियां दिखाई नहीं पड़ती हैं तो प्रभाव की तीव्रता के कारण अथवा कला के सघन रचाव के कारण। एक बार दिशा संकेत मिल जाने पर निरर्थक प्रतीत होने वाली छोटी छोटी बातें भी सार्थक हो उठती हैं, चाहे कहानी हो चाहे जीवन कठिनाई। यह है कि दिशा संकेत निर्मल की कहानी से बड़ी सहजता से आता है और प्रायः ऐसी अप्रत्याशित जगह जहां देखने के हम अभ्यस्त नहीं हैं। क्या जीवन में भी सत्य इसी प्रकार अप्रत्याशित रूप से यही कहीं साधारण से स्थल में निहित नहीं होता? कहा तो है निर्मल ने बिट्टो के लिए, लेकिन क्या यह कथन उनकी कहानी के लिए भी सच नहीं है? आज सोचता हूँ जाने से पहले बिट्टो कुछ ऐसा कहती जिससे कोई विचित्र चमत्कार उद्घाटित हो पाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह जिस तरह अचानक कमरे में घुस आई थी वैसे ही सहज भाव से चली गई। उस समय मुझे ऐसा आभास हुआ था कि वह जाते जाते दरवाजे पर क्षण भर छिटकी थी, मानो कोई बात करने जा रही हो, जैसे कुछ शेष रह गया है, लेकिन शायद मेरा भ्रम था। जरूर भ्रम हो सकता है, यह कहानी के अंतिम कथन के लिए ही कान लगे रहे। जिस तरह बिट्टू अपनी बात साहचर्य के ही क्षणों में अनायास कह चुकी थी, निर्मल की कहानी भी अप्रेत को अंत से पहले ही कह जाती है। जीवन का सत्य यदि मृत्यु के समय में ही मिलता हो तो ऐसे सत्यान्वेषियों को आंख मूंद कर केवल मृत्यु की प्रतीक्षा करनी चाहिए या जल्दी हो तो एक छलांग में आय की सारी दूरी पार कर मृत्यु के तुरंत समीप पहुंच जाना चाहिए। ऐसे सत्यान्वेषण का एक दूसरा पहलू है सतह के चाकचिक्य को ही इस इदमित्थम मान लेना। ऐसे भी पाठक हैं जिन्हें निर्मल की कहानियों के दृश्य चित्र अच्छे लगते हैं, सूक्ष्म इंद्रिय बोध जगाने वाली छवियां पसंद हैं तथा अनुभवपूर्ण क्षणों का आलेख सुहाता है। शायद ऐसे ही लोगों के लिए डायरी का खेल में निर्मल कहते हैं, किंतु बिट्टू का सत्य इन बातों घटनाओं स्मृतियों का जोड़ मात्र है। क्या उससे परे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कहानी का प्रेत इन चित्रों को प्रस्तुत करते हुए भी उनका अतिक्रमण करता है। क्या पाठक से भी ऐसे अतिक्रमण की मांग नहीं की जा सकती। निर्मल ने अपनी रचना के द्वारा प्रमाणित कर दिया है कि जो सबका अतिक्रमण करने की क्षमता रखता है वही सबको सजीव चित्रों में उरेहने की सिद्धि भी प्राप्त करता है। निर्मल ने स्थूल यथार्थ की सीमा पार करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने तत्कालिक वर्तमान का अतिक्रमण करना चाहा है। उन्होंने प्रचलित कहानी कला के दायरे से भी बाहर निकलने की कोशिश की है, यहाँ तक कि शब्द की अभेद दीवार को लांघकर शब्द के पहले के मौन जगत में प्रवेश करने का भी प्रयत्न किया है और वहाँ जाकर प्रत्यक्ष इंद्रिय बोध के द्वारा वस्तुओं के मूल रूप को पकड़ने का साहस दिखलाया है। इसीलिए उनकी कहानी कला में नवीनता है, भाषा में नवजातक की सी सहजता और ताजगी है। वस्तुओं के चित्रों में पहले पहल देखे जाने का अपरिचित टटकापन है। उनका गद्य शुद्ध गद्य है, ठेठ वाचक शब्द विशेषणहीन सज्जाए उपमा रहित पद तथा स्वतंत्र वाक्य। अलग अलग करके देखने पर हर शब्द मामूली है, हर वाक्य साधारण है, लेकिन पूरा प्रभाव जबरदस्त है। गद्य की रुखाई से भी वे स्थितियों के अनुरोध से कवित्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न कर ले जाते हैं। कवित्व लाने के लिए दूसरे कथाकारों की तरह अलग से किसी देश या विदेशी भाषा की कविता को उद्धृत करने की जरूरत महसूस नहीं होती। छोटे से छोटे ब्यौरे पर भी उनकी पकड़ है और बड़े से बड़ा सवाल भी पकड़ की सीमा के अंदर है। कहानियां फकत सात हैं, संग्रह अभी पहला है। जिसे हम नई कहानी कहना चाहते हैं संभवतः उसका भी पहला संग्रह यही है। फिर भी अंत में एक बात कहने के लिए रह जाती है और बेहतर है कि उसे निर्मल के ही शब्दों में कहा जाए। आत्मस्वीकृत तीसरा गवाह के मिस्टर रोहतगी की है। जब कभी सोचता हूँ हर बार कोई नया नुक्ता उभर आता है जिसकी तरफ पहले ध्यान नहीं गया था, या किसी बात का नया पहलू नजर आने लगता है जिसे पहले न देख सका था।